Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ खबरों पर स्टूडियो में चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
आप दोनों के साथ साथ सभी सुनने वालों को भी नमस्कार.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस स्टेज अ स्टेलर रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लोज. सेंसेक्स राइजेस बाय 193 पॉइंट्स टू क्लोज एट 83,433. निफ्टी एंड्स अबव 25,450. प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस ओसीआई कार्ड्स टू सिक्स्थ जनरेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन सिटीजंस इन ट्रिनिडैड एंड टोबैगो. Congratulates a Caribbean nation for adopting UPI payment system. And US President Donald Trump announces a plan to send tariff rates letters to trading partners.
घरेलू शेयर बाजार में शुरुआती कमजोरी से उबरकर बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक. सेंसेक्स 190 अंक कुचला, निफ्टी 25,450 के ऊपर बंद हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिडाड और टोबैगो में भारतीय मूल की छठी पीढ़ी के लोगों को ओसीआई कार्ड दिए जाने की घोषणा की. प्रधानमंत्री ने कैरेबियाई देशों को यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाए जाने पर बधाइयां दी. और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के साथ कारोबार करने वाले भागीदार देशों को शुल्क दर संबंधी पत्र भेजे जाने की घोषणा की. घरेलू शेयर बाजार में आज थोड़ा सा उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होते हुए देखा गया. मध्यकाल में बिकवाली तेज थी, लेकिन आखिरी चरण में लोगों का रुझान खरीदने की ओर बढ़ा और प्रमुख सूचकांक अंततः 0.2% लाभ के साथ बंद हुए. बिकवाली का रुझान दोपहर कारोबार में विशेष रूप से देखा गया, जबकि आखिरी क्षणों में लोगों ने अच्छी खासी संख्या में लिवाली की. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 193 अंक बढ़कर 83,433 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 56 अंक बढ़त के साथ 25,461 दर्ज हुआ. छोटी और मझोली कंपनियों पर ध्यान दें तो वहां भी बढ़त के साथ प्रमुख सूचकांक बंद हुए. बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.2% से ऊपर की अधिक बढ़ोतरी हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग 0.2% के आसपास बढ़ के बंद हुआ.
Benchmark domestic equity indices today staged a stellar recovery from intraday lows and ended with modest gains of over 0.2% each. Both the stock market indices picked up pace during the last hour of trade, reversing marginal losses incurred post mid-session. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, gained by 193 points to close at 83,433. The National Stock Exchange Nifty 50 added 56 points to settle at 25,461. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also closed up. The mid-cap index rose by over 0.2% and the small-cap index advanced almost 0.2%.
सेंसेक्स पैक पर आज नजर डालें तो 30 में से 20 कंपनियों के शेयर लाभ के साथ बंद हुए. लाभ उठाने वालों में सबसे ऊपर बजाज फाइनेंस देखा गया. इसके शेयरों में 1.6% की वृद्धि हुई. इन्फोसिस को 1.3% और हिंदुस्तान यूनिलीवर को 1.2% का मुनाफा हुआ. नुकसान उठाने वाली कंपनियों में सबसे अव्वल रही कंपनी ट्रेंट, जिसके शेयर लगभग 12% लुढ़क गए. टाटा स्टील के शेयरों में 1.7% की गिरावट हुई. उधर टेक महिंद्रा को 1% से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा.
In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 16 out of the 21 sectors ended up. Among the top gainers, oil and gas surged over 1.2%, energy climbed 0.9%, and realty increased nearly 0.9%. In the top laggards, metal dipped more than 0.4%, consumer discretionary slipped over 0.3%, and telecommunications fell over 0.2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,259 companies advanced, shares of 1,790 companies declined, while shares of 140 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 59 companies hit their 52-week high, while 35 companies hit their 52-week low.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 8 पैसे कमजोर हुआ, 85 39 पैसे के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 96.94 पर चल रहा था. सिद्धार्थ जी, बाजार में आज थोड़ा सा हिचकोला होता हुआ नजर आया, आखिरी चरण में खास तौर से रुझान लौटा निवेशकों का क्या प्रमुख कारण रहे?
नहीं मनु जी, आपने जैसा कहा और जैसा कि मुझे लगता है पूरी दुनिया में जो ट्रंप साहब के टैरिफ का जो एक धमकी थी और जो अब जो ट्रेड डील की बात हो रही थी कि उन्होंने सब देशों को बोला है कि आपको एक फेवरेबल ट्रेड डील जो है यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका के साथ करना है, और शायद उसी का जो कहीं ना कहीं प्रभाव हमारी जो शेयर बाजार है वहां पे भी आज दिखा, क्योंकि अब जो वो डेट है, डेडलाइन है 9 जुलाई, तो वो एकदम हमारे सर पे खड़ी हुई है और आज शायद हमारी जो नेगोशिएशन जो टीम थी वो भी आज लौट रही है या लौट आई है. जो हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हैं कॉमर्स में मिस्टर राजेश अग्रवाल, हु वाज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन, बट आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले भी सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, मतलब किसी अधिकारी ने बोला है कि अभी भी बातचीत चल रही है, आखिरी दौर की बातचीत. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजार में उसका बहुत बड़ा प्रभाव था और इसीलिए हमने देखा कि आज मार्केट शुरू में बीच में जैसे आपने बोला भी कि नीचे गई, फिर उसके बाद जो है लास्ट ट्रेडिंग उसमें जो है सेशन में काफी वापस उसमें बाजार में दम दिखा. लेकिन क्योंकि एक ये तो एक इमीडिएट कारण हो सकता है जो बाजार में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, या बाजार एक दिशा उसके थ्रू एक दिशा उससे मिलेगी अगर ट्रेड डील होती है, और जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है. हालांकि सर्टेन इश्यूज आर देयर, तो आई एम श्योर दोज विल बी एड्रेस्ड वंस द डील इज अनाउंस्ड एंड सो एंड बट इन इफ यू लुक इन द लार्जर कंटेक्स्ट व्हाई इंडियन मार्केट्स आर स्टिल नो हैंगिंग ऑन स्टेबल, तो आपको लगेगा कि जो डोमेस्टिक फैक्टर्स आप देखेंगे, जहां तक हमारी अपनी ग्रोथ रेट है वो इंटैक्ट है. आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट घटा दिए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने जो है सरकार की तरफ से जब बजट आया तो सरकार ने डिमांड पुश देने के लिए इनकम टैक्स में रियायत दी, और अब एक और बात हो रही है कि कहीं ना कहीं जीएसटी की जो एक स्लैब है 12% की, उसको भी हम घटाएं ताकि कहीं ना कहीं डिमांड पुश भी मिले. साथ ही अभी वित्त मंत्री ने भी बैंकों के साथ बैठक की और उनको भी इस बात के लिए कहा है कि वो जल्द से जल्द अपनी ब्याज दरें जो हैं घटाएं, ताकि जो लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं उनको उसका फायदा मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्रेडिट जो है पहुंचे, और खासकर एमएसएमई सेक्टर के लिए.
जी सिद्धार्थ जी, जस्ट कमिंग बैक टू द ट्रेड डील, 10% बेसलाइन, 26% इज द टैरिफ इम्पोज बाय द यूएस ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. क्लियरली वी आर सीकिंग एग्जेम्पशंस. मेटल विच द मेटल सेक्टर is clearly looking at favorable export terms. They went down to 0.4% today, Nifty Metal. And on the other side, IT Nifty actually went up marginally by 55 points in the Nifty IT index. So what's the outlook for export-based sectors like metal and IT in this very crucial period against the US dollar, which is actually weakening? It's the dollar index is showing it at 96.94. So what's the sentiment ahead of the announcement before July 9th?
See Arjun, as you said, US is our biggest trading partner. We have almost close to $200 billion of trade, annual trade with US, and we aim to step it up to about $500 billion by 2030. So, and that is why there is so much of focus on this ट्रेड डील विद यूएस बिकॉज ट्रंप हैज बीन थ्रेटनिंग कंट्रीज बिकॉज ही आफ्टर ही इज टेकन ओवर एज प्रेजिडेंट ऑफ यूएस ही फील्स ही इज बीन सेइंग दैट आई वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड ही इज बीन एम्फेसाइजिंग इन द फैक्ट दैट इट्स इनफ इज इनफ नाउ कंट्रीज हैव इम्पोज हाई टैरिफ्स ऑन यूएस एक्सपोर्ट्स एंड दे आर इम्पोर्टिंग इन यूएस और दे आर एक्सपोर्टिंग टू यूएस एट वेरी लो टैरिफ्स सो दैट इज वाई ही थ्रेटन्ड एंड वी आर ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ दैट वी हैव ऑल्सो बीन वी इनिशियली वेन ही अनाउंस टैरिफ्स अक्रॉस द नेशंस ही वी वर ऑल्सो पुट एट 26% 26% rate tariff rate was imposed on us, which was later on reduced to 10 till we finalize an interim deal for which the deadline is July 9. So I think in that light, plus especially there is also today US has also imposed certain tariffs on our auto exports. Plus already we are having issues with, since you talked about metal, with steel exports to US. So all that is looming. Plus, but yes, any trade deal, I'm sure would give a fillip to our exports in any case, because US is a dominant partner for us in terms of our exports. So I think now the finer details we'll have to wait, and that is why we were seeing that kind of impact on the markets also, that they've been range bound, broadly range bound. So I think we should wait for the trade deal, whatever the detail, finer details, which I'm sure Trump has been very positive. He's been saying that we'll announce a very good deal. We're almost close to that.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज कुल मिलाकर मिला जुला रुख दिखा. एक ओर बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 2% लुढ़क गया. हांगकांग के हेंगसिंग में 0.6% की गिरावट हुई. सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.15% घाटे के साथ बंद हुआ. उधर निवेशकों की खरीदारी से चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.3% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली. इस बीच जापान का निकेई 225 सूचकांक बिना किसी खास उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बंद हुआ. यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां बिकवाली दिख रही थी. फ्रांस का कैक 40 लगभग 1% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था. जर्मनी के डेक्स में लगभग 0.7% की कमी दिख रही थी. लंदन का फुटसी 100 भी 0.2% से अधिक घाटे के साथ कारोबार कर रहा था.
What's your take on the treasury market, where the yield has actually gone up even more in the current trade right now, because a lot of the Asian giants are into US treasuries in a big way. And if you're on the currency side, if you just pair it with the European stock markets, the euro has also strengthened. Do you expect the trade deal to be positive as far as Europe is concerned and the Asian giants like Japan?
See, Japan is very difficult to say because they are struggling with their own economy, still not being able to reach the pre-COVID levels, and plus they have also high inflation. So Japan is has a lot of internal problems. But if you look at European Union, I think they are also close to a trade deal with US. But as far as the yield question you said, I think that is a result of the bill which has just been cleared by the US House of Representatives. So I think that is because that is giving a clear indication that US will borrow more, because they're going to cut taxes and borrow more to push their own economy. So in any case, if you borrow more, obviously the yields will go up.
Well, let's have a look at the U.S. markets now. U.S. stocks rallied on Thursday to yet another record closing high amid stronger than expected U.S. jobs report. The Nasdaq composite surged over 1% to close at 20,601. The S&P 500 gained more than 0.8% to end at 6,279, while the Dow Jones Industrial Average rose around 0.8% to settle at 44,829. Earlier, total non-farm payroll employment increased by 147,000 in June, and the unemployment rate changed little at 4.1%, according to the U.S. Bureau of Labor Statistics. Meanwhile, after markets closed, Republicans in the U.S. House of Representatives approved President Donald Trump's massive tax cut and spending bill. The Congressional Budget Office estimates the bill could add $3.4 trillion to the nation's $36.2 trillion debt and leave millions without health coverage, a forecast that the White House disputes. So a lot of internal issues in terms of their fiscal deficit, but the unemployment is still at 4.1%. 1%, what's happening in the US? Do you feel that the illegals being driven out is creating job opportunities for Americans? Is the US economy on its way up after the contraction earlier?
No, Arjun, I think it's too early to draw that kind of a conclusion that since immigrants are being, illegal immigrants are being thrown out, so it's creating more jobs. But I think the data which we have got for June is very promising for U.S. as far as U.S. But what the concern for the Fed is, what is the kind of impact they would have post Trump's initiatives on imposing high tariffs on countries and that kind of disruptions on the economy. So I think there is still time, and that is why they have not cut interest rates, which last they had cut in, Fed had cut in December. So I think it's early time, early days for us to draw any conclusion. They're still waiting for more data.
अमेरिका से खबरों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विभिन्न देशों को अमेरिका के साथ कारोबार के लिए जवाबी शुल्क संबंधी पत्र की योजना भेजे जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्वारा तय तिथि 9 जुलाई के समीप आने से पहले ये पत्र आज से सभी देशों को भेजने आरंभ हो जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि पत्र में सभी देशों को वह तय राशि अनिवार्य रूप से भुगतान करने संबंधी जानकारी दी जाएगी, जिसके आधार पर जटिल वार्ताओं के आधार पर सरल कारोबारी समझौता करने संबंधी राष्ट्रपति की प्राथमिकताओं का उल्लेख स्पष्ट रूप से रहेगा। यानी जो आखिरी तारीख 9 जुलाई वह लगता है कि अब इस बार स्थिर रहेगी, और जो ये पत्र जा रहा है उसी की चेतावनी माने या 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 इसे क्या
मनोज जी, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक था। आप ये मान सकते हैं कि उनका मतलब बड़ा क्लियर वो है इंडिकेशन कि अब जिन कंट्रीज के साथ जो ट्रेड डील हो गए उनको तो हम लेटर देने जा रहे हैं, और जो छूट रहा है तो उनको उनके ऊपर ये प्रेशर है या दबाव है कि आप भी जल्दी जल्दी आप जो भी नेगोशिएशन है उसको पूरा करिए ताकि आपको भी हम इसमें शामिल कर सकें।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
इन मोर न्यूज, Prime Minister Narendra Modi dedicated his address to the diaspora in Trinidad and Tobago on the 3rd of July to 35 million Indian diaspora across the world. In his speech, he congratulated Trinidad and Tobago for becoming the first nation in the Caribbean islands to adopt UPI. He also announced extension of the OCI card to the sixth generation of Girmitya Samaj in Trinidad and Tobago. Both the UPI and OCI have deeper economic collaborative role between the two countries. On this, we are joined by Sakshi Singh, who is covering the Prime Minister's visit to Trinidad and Tobago. Sakshi, it's good to have you on Akash Vani. Could you tell us, for the benefit of our listeners on Akash Vani, what are the new areas of trade and economic cooperation being sought between India, between the what is the adoption of UPI by Trinidad and Tobago in the Caribbean islands, promoting digital payments and boosting cross-border financial inclusion?
Arjun, when we're talking about of systems like UPI, they have revolutionized digital transactions. They have empowered people by making the transactions so easy, and in a long run, they are bringing financial inclusion. So when countries like Trinidad and Tobago, they adopt systems of digital payments like UPI, it increases, it enhances India's stature in the world to provide such fintech credible solutions to the world. And in a long run, adoption of such systems will impact the flow of remittances between the countries, and it'll have a smooth overall financial transactions between the nations in a long run.
Sakshi, could you tell us how is the extension of the OCI card to members of the Girmitya Samaj, who are people of Indian origin, now in their sixth generation in Trinidad and Tobago, fostering economic ties and creating opportunities for Indian startups and businesses?
Arjun, see, OCI card is not just to promote cultural ties, but to lay foundation for economic cooperation between the nations. It's an invitation to diaspora youth to invest, to leverage the startup ecosystem in India, and to partner with Indian corporations for establishment in their own countries. So in a long run, it can be seen as economic, inclusive economic growth of both the nations.
Well, thank you, Sakshi, for giving us that update from Trinidad and Tobago.
सिद्धार्थ जी, यहाँ हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे चर्चा में। भारतीय भुगतान प्रणाली पहली बार कह लें कि बड़े यानी देश के बाहर निकल रही है और यूपीआई को कैरेबियाई देशों ने अंगीकार किया है। किस रूप में हमें लेना चाहिए अपने यूपीआई को और इसके उड़ते हुए पंखों को, जो अब दुनिया में अपनी पहुंच बनाने के लिए अपने ही समाज के लोगों की छठी पीढ़ी के बीच पहुंच गया है।
नहीं, जैसा कि मनोज जी आपने कहा कि ये शायद हम इसको यूपीआई का, हम इससे पहले ऑलरेडी 7 देशों के साथ हमारा करार हो चुका है जिसका इस्तेमाल आपने उदाहरण के तौर पे नेपाल है, श्रीलंका है, फ्रांस है। हाँ, ये जरूर है कि ये इसलिए अनोखा है क्योंकि ये पहला करेबियाई देश है जहां पे यूपीआई का जो है यूपीआई हम इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। और इस सबसे बड़ा बात, जैसा हमारे आकाशवाणी के जो करेस्पॉन्डेंट है उन्होंने भी बताया कि कैशलेस है और आप सब, इट्स लाइक कि आप दिल्ली में जैसे पेमेंट कर रहे हैं वैसे ही ट्रिनिडैड टोबैगो में भी जाके आप अपना यूपीआई से कोई भी सामान खरीदना हो, बेचना हो, वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप दोनों देशों के बीच में एक इकोनॉमिक टाइज या इकोनॉमिक रिलेशंस बनाने में भी बहुत कहीं ना कहीं एक विश्वास पैदा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दोनों के जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो भी इंटीग्रेट हो रहे हैं। अगर वो इंटीग्रेट नहीं होंगे तब तक आपका यूपीआई इंटरफेस चलेगा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, महत्वपूर्ण कदम है। साथ साथ जो ओसीआई कार्ड की बात की है उससे भी क्या होता है कि सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहां का नागरिक, जो भी जिनको भी ओसीआई कार्ड मिलेगा, जो हिंदुस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, वो जितने बार भी चाहें वो इंडिया में लिमिट आ जा सकते हैं, आप यात्रा कर सकते हैं, आपको मल्टी विजिट का वीजा रहता है, आप यहां पे बिजनेस कर सकते हैं, आप यहां कितने भी समय तक यहां रह सकते हैं, आपको किसी तरह का किसी प्री वेरिफिकेशन जैसे पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह की जरूरत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेड कल्चर और को एक साथ इंटीग्रेट करता है।
सिद्धार्थ जी, टेल अस समथिंग अबाउट द कंपटीशन दैट वीजा इज फेसिंग फ्रॉम यूपीआई इन टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस बीइंग कैरीड आउट ग्लोबली नाउ, एंड वेयर डू यू सी यूपीआई इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म?
नहीं, आई थिंक यूपीआई इज समथिंग विच इज, एज आर करस्पॉन्डेंट ऑल्सो सेड, दैट इट इज अ रेवोल्यूशन विच इज अ वेरी साइलेंट रेवोल्यूशन एंड वी आर आई थिंक लीडर्स इन द ग्लोब, इन द वर्ल्ड, एंड आई थिंक देर इज नो अदर सिस्टम विच मैचेज विद यूपीआई, एंड आई डोंट थिंक वीजा इन इट्स लॉन्ग रन वुड स्टैंड और वुड कम एनीवेयर क्लोज टू यूपीआई। सो यूपीआई इज समथिंग, इट्स वेरी यूनिक सिस्टम वेयर you are sitting here, you go from here, you carrying your mobile phone, you go to you land in France or you land now for this that matter in Trinidad Tobago, and you can just make payment from your mobile phone on the UPI interface. So that is also integrating the financial system, the banking system of both the countries, otherwise it won't be possible. Plus sending remittances, you know, if you want to send money from there to your somebody in India or from India to Trinidad Tobago or to any other nation from which we have all we are having tie up on UPI. We already have 7 nations, I think we, and I think we are talking to 6 or 7 more nations. Plus it is also, it is something, it is cashless, faceless, you don't have. So it is only, it's a technological revolution which is cashless, so, and is easy and for anybody to use.
So one can say that an international payment system is also boosting tourism because Indians love to travel, and the Caribbean islands is one such a hot destination for Indians who wish to go to that part of the world.
I think it is boosting all kind of payments, not why only tourism. And you would have seen, I remember some foreign dignitaries from one of the countries who visited India recently, and he was making a UPI payment and buying some vegetable from some vendor in New Delhi. So I think it is facilitating for anybody, and for them it's an experience to, you know, because for us, we are now so used to UPI, we just at times, a lot of us just move without money because we know we have our mobile phones, we don't need to worry about, you know, making payments. Plus you do not need any, you know, kind of there is no restriction on the transaction, the way you transact, or you're looking for any kind of change in currencies.
Well, let's move on to some more news now. Securities and Exchange Board of India, SEBI, has banned US-based investment firm Jane Street from the Indian securities markets for manipulating stock indices and unlawfully earning 4,843 crore rupees. In an order issued yesterday, SEBI shared details that the Jane Street Group manipulated index levels through aggressive buying and selling of key bank Nifty and Nifty 50 constituent stocks, thereby influencing options pricing to generate substantial profits. This has been a top story. Let's now move on to some more news. Prime Minister Narendra Modi will be in Argentina on the 4th and the 5th of July. Discussions on trade and the economy will form an important part of his meeting with Argentine President Javier Milei. This visit is happening at a particularly significant time as Argentina is undertaking major economic reforms somewhat similar to those that India went through in the past. We're joined by Manish Shiva, who is covering the Prime Minister's visit. Manish, good to have you on Akash Vani. Do tell us what's the latest from Buenos Aires between the Indian delegation and the Argentine delegation, and what are the new areas of economic cooperation and trade that we are looking at?
Hi, Arjun. Traditionally, India and Argentina, the trade has been focused on mostly agri-based businesses and petroleum. Of late, however, we are more interested now in lithium and energy security, getting more oil and gas, shale, etc. So now this has actually changed the dynamics a bit. On the other hand, if you look at it from India's point of view, we are also in a position to export our information technology related services. So these are basically the newer areas that have emerged.
I understand energy security and the civilian use of nuclear technology is also the new areas of economic cooperation and trade that we're looking at.
Absolutely. In fact, Argentina has some of the largest reserves of shale gas as well as shale oil. And they were recently involved in a small reactor that was built in Mumbai, but of course for peaceful purposes.
Manish, how is the current visit of Prime Minister Narendra Modi to Argentina, taking these bilateral ties to the next level? I understand we have a very rich history in diplomacy as well.
Yes, of course. We've had a very strong economic and people-to-people connect as well. Back in 2019, this relationship was elevated to the level of strategic partnership. Only last year, we celebrated 75 years of diplomatic relations. But since you mentioned about the Prime Minister's visit, I think I'd like to point this out, that India's prospective exports to Argentina in the coming years, they're all going to be based on the technology revolution that has happened in the last decade or so. So be it telemedicine, be it the digital public infrastructure, or others. So I think that way we can now see a positive perspective of how India also engages with Argentina.
Well, thank you so much, Manish Shiva, our correspondent from Buenos Aires, Argentina, giving us the latest on Prime Minister Narendra Modi's visit there. Let's now move on to some more news, this time from the crude oil market. The crude oil prices slipped today. Brent crude was trading over 0.7% down at $68.27 per barrel. And WTI crude was also trading over 0.7% down at $66.50 per barrel when reports last came in.
और अब चलें सर्राफा बाजार. सर्राफा बाजार में सोने पर हम ध्यान दें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाला 0.1% बढ़त के साथ 96,903 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं जुलाई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य बिना किसी बदलाव के 1,07,280 रुपए प्रति किलो के आसपास चल रहा था. यदि हम भारत के सर्राफा बाजार में ध्यान दें तो भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.1% बढ़त के साथ 96,840 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं चांदी 1,07,810 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी. और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू.
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices stage a stellar recovery from intraday low. Sensex rises over 190 points. Nifty ends above 25,450. Prime Minister announces OCI cards to sixth generation of Indian origin citizens in Trinidad and Tobago. Congratulates this Caribbean nation for adopting UPI payment system. And US President Donald Trump announces a plan to send tariff rate letters to trading partners. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.